बहुत सुंदर अभी ये गीत हम सभी ने सुना कि समय का पंछी उड़ता जाए, समय मनुष्य जीवन के अंदर बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि समय के बारे में बहुत कुछ कहा हुआ है दुनिया में। आज मैनेजमेंट में भी सबसे महत्वपूर्ण विषय अगर हो गया है तो वो है टाइम मैनेजमेंट। लोग समय को मैनेज करना चाहते हैं, लेकिन बिना समय को समझे, समय को समझे तो सही, क्योंकि समय का संकेत क्या है? समय हमेशा कोई ना कोई संकेत देता है, और जो उस संकेत को समझ पाता है और उसके हिसाब से चलना आरंभ करता है तो समय उसको जीवन में आगे बढ़ा देता है। इसीलिए दुनिया में समय के विषय में बहुत कुछ कहा हुआ है, और खासकर लोग यही कहते हैं कि समय बड़ा बलवान है, समय के आगे मनुष्य का जोर नहीं चलता है। समय वास्तव में समय प्रति समय हमें जो संकेत देता है उसको समझना आवश्यक है। जीवन में कभी भी कोई घटना घटती है, कोई परिस्थिति आती है, कोई समस्या आती है, तो वो समस्या, परिस्थिति या घटना या समय हमसे एक प्रतिउत्तर की मांग करती है। टाइम डिमांड्स अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द इंडिविजुअल, और समय के डिमांड के हिसाब से अगर हमने प्रतिउत्तर दिया तो समय हमें सहजता से आगे बढ़ा देता है। परंतु अगर समय की मांग को समझ नहीं पाए और उसके विपरीत दिशा में चलते रहे तो समय बड़ा कठोर भी हो जाता है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग जब किसी को सुधारने के लिए कुछ सलाह देते हैं या उपदेश देते हैं और वो बच्चे नहीं समझते हैं तो लोग क्या कहते हैं? छोड़ दो समय पर, समय की पछाड़े खाएगा तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी। लेकिन समय हमारा शिक्षक क्यों बने? क्यों नहीं हम समय को समझते हुए उसी अनुसार प्रतिउत्तर दे? तो समय की डिमांड क्या है? समय की डिमांड है परिवर्तन। इसीलिए कहा जाता है चेंज इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। हर घड़ी परिवर्तन होता आया है, होता रहेगा। और समय किस प्रकार का परिवर्तन चाहता है उसका संकेत देता है। इसीलिए कहावत है, इफ यू कैन नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम विल फोर्स यू टू चेंज एंड दैट विल बी अ पेनफुल प्रोसेस। समय की मांग है परिवर्तन, और अगर समय के हिसाब से हमने परिवर्तन को नहीं अपनाया तो समय बड़ा कठोर हो जाता है, अच्छे अच्छे को पछाड़ना आरंभ करता है। लेकिन समय बीत जाने के बाद अगर होश भी आया तो क्या काम का? समय तो निकल गया ना हाथ से। और समय बीत जाने के बाद परिवर्तन को अगर अपनाया तो भी कोई फायदा नहीं है। या उसका इफेक्ट बहुत कम हो जाएगा। समय की मजबूरी से अगर परिवर्तन करना पड़े तो वो समय बड़ा दर्दनाक होता है, क्योंकि भीतर से इच्छा है नहीं परिवर्तन करने की, समय की मजबूरी है, करना पड़ रहा है, तो वो समय बड़ा दर्दनाक होता है। इसलिए समय परिवर्तन की मांग करता है। कौन सा परिवर्तन, कैसा परिवर्तन, उस संकेत को समझने की आवश्यकता है कि वर्तमान समय हमसे क्या कह रहा है। और उसी का आज का सत्र जो है अंडरस्टैंडिंग टाइम साइकिल, समय के चक्र को, काल चक्र को समझना जरूरी है। समय का चक्र, चक्र क्यों कहा, क्योंकि चक्र माना जो नित्य परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए कहा जाता परिवर्तन कुदरत का नियम है। परिवर्तन होता आया है, होता रहेगा। ये समय हमसे क्या परिवर्तन की मांग करता है। समय का चक्र जिस तरह से चलता जाता है, और इस समय के चक्र के अंदर जितने भी चक्र बने हुए वो भी नित्य चलते जा रहे हैं। दिन और रात का चक्र है, नित्य चल रहा है। ऋतुओं का चक्र है, नित्य चल रहा है। मनुष्य जन्म पुनर्जन्म का चक्र है, नित्य चल रहा है। कुदरत के साइकिल को अगर देखा जाए, पानी वैपोरेट होता है, बादल बनते हैं, वो बादल बरसते हैं, फिर वो पानी नदियों के द्वारा समुद्र में आके मिल जाता है। ये साइकिल भी चलती रहती है। कुदरत के जितने भी बने हुए चक्र है, चक्र माना जिसकी आदि और अंत नहीं है, जो नित्य चलता है। दिन और रात का चक्र कब शुरू हुआ था? रात को 12 बजे, सुबह 4 बजे, 6 बजे, 10 बजे कब शुरू हुआ पता ही नहीं। ऋतुओं का चक्र कब शुरू हुआ? पहली जनवरी, मार्च, मई कब शुरू हुआ पता ही नहीं है। हाँ, मनुष्य ने अपनी व्यवस्था को बनाने के लिए रात को 12 बजे के बाद दूसरा दिन कह दिया, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि ये चक्र रात को 12 बजे ही शुरू हुआ था। तो जिसकी आदि और अंत नहीं है, लेकिन हाँ, हर चक्र को चार अवस्था से जरूर गुजरना पड़ता है। जैसे दिन और रात के चक्र की चार अवस्था है, सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि, रात्रि के बाद पुनः सुबह हो जाती है। ऋतुओं के चक्र में भी चार अवस्था है, ग्रीष्म, बरसात, शीतकाल, बसंत, फिर ग्रीष्म आ जाता है। मनुष्य जन्म पुनर्जन्म के चक्र में भी चार अवस्था है, बचपन, युवा, गृहस्थ, वृद्ध। इसी तरह ये काल चक्र में भी चार अवस्था है, जिसको कहा जाता सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। कलयुग के बाद क्या होगा? पुनः सतयुग आएगा, क्योंकि ये चक्र है। कई लोग सोचते हैं इतना घोर पापाचार का युग कलयुग सतयुग में कैसे बदल जाएगा? कोई मनुष्य का काम नहीं है उसको बदलना। जिस तरह घोर अंधेरी अमावस्या की रात सुनहरी सुबह में अपने आप बदलती है, कोई चाहे या न चाहे, परिवर्तन नित्य प्रक्रिया है। कुदरत की रचना में ऐसी सेटिंग्स है कि घोर अंधेरी अमावस्या की रात धीरे 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 सुबह में बदल जाती है। कोई सारी रात भी बैठ जाए देखने के लिए कि भोर कैसे निकलती है, भोर कब निकल आती है पता भी नहीं चलता। तो हर चक्र की चार अवस्था जरूर है, जिसमें से उस चक्र को गुजरना पड़ता है। लेकिन यह भी है कि हर चक्र की एक अवधि जरूर है, एक ड्यूरेशन पीरियड है, जिसमें उसको वो साइकिल कंप्लीट करनी होती है। जैसे दिन और रात के चक्र की अवधि है 24 घंटा, उसी में ही ये साइकिल कंप्लीट हो जाता है। ऋतुओं के चक्र की अवधि है 1 साल, उसमें ये साइकिल कंप्लीट हो जाता है। ऐसे एक काल चक्र की अवधि है 5000 साल, परंतु जब ये 5000 साल सुनते हैं तो कई लोगों के मन में कई प्रश्न आ जाते हैं कि 5000 कहां से आया। शास्त्रों में तो एक एक युग लाखों साल के लिखे हैं, अब 5000 कैसे कहते हैं, और क्या सबूत है कि ये चक्र 5000 साल का है, कई प्रश्न आते हैं। लेकिन मैं अगर ये पूछूं कि लाखों साल का एक एक युग है, उसका कोई सबूत है, तो कैसे स्वीकार कर लिया कि लाखों साल का एक एक युग है। 5000 का सबूत है हमारे पास, और वैसे देखा जाए तो कोई भी चक्र का सबूत मनुष्य के पास नहीं है। 24 घंटे का चक्र है, कहां से आए? जिसने भी कैलकुलेट किया, 60 सेकंड की एक मिनट बनाई, 60 मिनट का एक घंटा बनाया, और ऐसे ये दिन और रात के चक्र को 24 घंटे में बांट दिया, और हमने स्वीकार कर लिया। कभी कोई प्रश्न किया कि ये 60 फिगर किस बेसिस पर आया? नहीं। अगर 100 सेकंड की एक मिनट या 100 मिनट का एक घंटा बनाते थे तो नहीं चलता था क्या? चलता ही था, घंटे कम हो जाते थे, वो ड्यूरेशन तो उतना ही रहना था। चाहे उसको डिवाइड करे 60 सेकंड, हम मिनट, 60 मिनट्स और 24 घंटे, 100 सेकंड में करो, 50 सेकंड की एक मिनट करो, नहीं चलता था क्या? चलता ही था, घंटे कम हो जाते थे या जास्ती हो जाते थे, वो ड्यूरेशन तो उतना ही रहना था। लेकिन ये 60 फिगर किस बेसिस पर आया, कभी प्रश्न नहीं किया, स्वीकार कर लिया, और हमने अपने जीवन को उस 24 घंटे के हिसाब से ढाल दिया। साल का चक्र अगर देखा जाए तो साल में कितने दिन होते हैं, कितने दिन होते हैं? 365 दिन। किसने कहा? मॉडर्न साइंस ने कहा कि पृथ्वी को 365 दिन लगते हैं चक्कर लगाने में, और हमने स्वीकार कर लिया कि मॉडर्न साइंस तो कभी झूठ बोल नहीं सकता है, कैलकुलेशन पर है। और इस तरह से 12 मास का एक कैलेंडर बना दिया और सारी दुनिया ने स्वीकार कर लिया। लेकिन अगर हिंदू कैलेंडर को देखा जाए तो वो भी एक साइंस पर बना है, और हिंदू कैलेंडर में साल में कितने दिन होते हैं? हिंदू कैलेंडर के हिसाब से साल में कितने दिन होते हैं? 3 साल के बाद अगर अधिक मास आता है तो साल में कितने दिन होते हैं? 354 दिन। अब 354 सही है, 365 सही है, क्योंकि हिंदू कैलेंडर भी एक साइंस पर बना है, और उस जमाने का साइंस जब भारत ने विश्व को 0 दिया था कैलकुलेट करने के लिए, तब मॉडर्न साइंस भी विकसित हुआ। लेकिन फिर भी दुनिया ने मान्यता किसको दी? इंग्लिश कैलेंडर को। जबकि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से अगर देखा जाए तो इतना एक्यूरेट बनाया है कि अमावस्या या पूर्णमासी जब आती है तो पूरा समुद्र का पानी उछलता है ज्वारभाटा के रूप में। आज भी सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि जो भी कैलकुलेशन है, जितना एक्यूरेट हिंदू कैलेंडर के हिसाब से होता है उतना और किसी कैलेंडर से नहीं होता है। भारतवासियों ने दोनों कैलेंडर रखा है। दुनिया का कारोबार इंग्लिश कैलेंडर पर और अपना त्योहार मुहूर्त जो निकालना हिंदू कैलेंडर पर। यह तो नहीं कहा कि इंग्लिश कैलेंडर सही है, मॉडर्न साइंस के आधार पर बेस्ड है, इसीलिए हिंदू कैलेंडर को फाड़ के फेंक दो। कहा क्या? और ये भी नहीं कहते हिंदू कैलेंडर सही है तो इंग्लिश कैलेंडर को फाड़ के फेंक दो। नहीं, दोनों कैलेंडर लेकर चल रहे हैं। सही कौन सा है पता नहीं, दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। लेकिन फिर भी दुनिया ने मान्यता किसको दी? इंग्लिश कैलेंडर को। न 24 घंटे कहां से आए उसका कोई सबूत है, न 365 या 354 सही है उसका कोई सबूत है। 5000 का सबूत चाहिए। अगर इसको स्वीकार कर सकते तो 5000 को क्यों नहीं कर सकते? करके देखिए। सपोज एक्स इज इक्वल टू 5000, फिर सारा थ्योरम कैलकुलेट करें, आ जाएगा आंसर, है कि नहीं? वैसे 5000 का वर्णन सभी धर्म पुस्तकों में किया गया है। हिंदू धर्म शास्त्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो महाभारत युद्ध को हुए कितने साल हुए? कितने साल हुए? 5000 साल। और उस महाभारत के अंतिम पर्व में ये बात आती है कि जब घर घर में महाभारत हो जाए तब समझना महाभारत काल पुनः आ गया। तो आज घर घर में क्या चलता है? चलता है महाभारत? चलता है? नहीं चलता है। तो महाभारत काल पुनः आ गया ना, हो गया ना 5000 साल। महाभारत में जो कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब किया गया है, शकुनी जैसे कैरेक्टर आज के समाज में देखने को मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? है शकुनी? क्या कहेंगे? है शकुनी? महाभारत में तो एक ही शकुनी दिखाया। आज हर मोड़ पर एक शकुनी बैठा होगा जो घर घर में आग लगा रहा है। दुर्योधन जैसा कैरेक्टर, दुर्योधन माना जिसने धन का दुरुपयोग किया, ऐसे पात्र भी आज के समाज में है या नहीं है? बहुत है। दुशासन जैसे पात्र भी है या नहीं है? और माता पिता पुत्र मोह में अंधे, ऐसे माता पिता भी है या नहीं है? तो महाभारत में वर्णित पात्र सभी इस वक्त समाज के अंदर प्रैक्टिकल दिखाई देता है। तो हो गया 5000 साल। इस्लाम धर्म शास्त्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनके पवित्र धर्म पुस्तक में भी ये बात आती है कि कयामत का समय 5000 साल में एक बार आता है। और उनके पवित्र धर्म पुस्तक के हिसाब से कयामत का समय आ रहा है। हो गया 5000 साल। क्रिश्चियन धर्म शास्त्र के हिसाब से भी ये बात आती है कि क्राइस्ट से 3000 साल पूर्व There was heaven on earth. 3000 साल पूर्व और 2000 साल बाद नॉस्ट्रोडेमस की भविष्यवाणियों के हिसाब से the golden era is to come. तो हो गया 5000 साल। तो हर धर्म शास्त्र के हिसाब से 5000 का वर्णन जरूर है। मायन कैलेंडर, मायन संस्कृति का 2012 के साल में टीवी के ऊपर बहुत चला भारत के अंदर। डेट भी दे दिया था उन्होंने तो 21 दिसंबर 2012 को दुनिया खत्म हो जाएगी, है ना। कई लोग हमें पूछते थे आकर के, बहन जी आप लोगों का क्या कहना है, 2012 में दुनिया खत्म हो जाएंगी। उसी साल मेरा मेक्सिको जाना हुआ था और मुझे पता नहीं था, लेकिन उसी स्थान पर जाना हुआ था जहां ये मायन खंडर था। तो जो गाइड हमें दिखाने के लिए ले गया वो मायन संस्कृति का था, मायन वंशज था, वो सारा हमें दिखा रहा था। दिखाते दिखाते मैंने उसको सवाल पूछा कि आप लोग कहते हैं 2012 21 दिसंबर को दुनिया खत्म हो जाएगी, सही है? तो उसने कहा हमने ऐसे कहा ही नहीं। मैंने कहा हमारे इंडिया में तो टीवी पर बहुत आ रहा है 21 दिसंबर बड़ा हाईलाइट हो रहा है, दुनिया खत्म हो जाएंगी। तो उसने कहा ये तो फिल्म बनाने वालों ने इतना हाईलाइट कर दिया है, बाकी हमने ऐसा नहीं कहा। तो मैंने कहा कुछ तो कहा होगा, नहीं तो ऐसे कैसे फिल्म बनाने वालों ने डेट भी दे दिया। तो कहा हमने ये कहा है, हमारे स्क्रिप्चर्स में शास्त्रों में ये बात लिखी है कि 21 दिसंबर 2012 को 5000 साल का चक्र पूरा हो रहा है, हमारा कैलेंडर मायन कैलेंडर पूरा होता है, और 22 दिसंबर से नया कैलेंडर आरंभ होता है, लेकिन उसके पहले परिवर्तन निश्चित है कि संसार में कुछ परिवर्तन जरूर होगा। उसी बात को इन्होंने बहुत हाईलाइट कर दिया। कहने का भावार्थ कि उनके शास्त्र में भी, फिर उसने सारा बताया कैलकुलेशन के 5000 साल का चक्र कैसे है। उसके पास मैंने मांगा लिटरेचर आदि, ये बात हम इंडिया में भी जाकर बताएंगे लोगों को। तो उसने कहा हमारी वेबसाइट पर सब कुछ मिल जाएगा, सारे चित्र भी मिलेंगे, सारा एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। मैंने कहा अच्छी बात है। तो हर धर्म के अंदर 5000 साल की बात का वर्णन जरूर है, लाखों साल का एक एक युग है इसका वर्णन कहीं भी नहीं है। अब ये 5000 साल का चक्र कैसे चलता है, कई बार कई लोग हमसे पूछते हैं कि फिर आर्कियोलॉजी वाले जो कहते हैं कि ये पत्थर करोड़ों साल पुराना है वो सही है कि गलत है? वो भी सही है। जिस तरह एक दिन और रात का चक्र 24 घंटे का है, लेकिन ऐसे दिन और रात का चक्र कितनी बार घूम चुका, 2015 साल से हम गिनती करते आए, लेकिन उसके पहले भी दिन और रात का चक्र चलता था या नहीं चलता था? चलता था। हमने गिनती नहीं किया तो क्या हुआ? ठीक इसी तरह एक काल चक्र 5000 साल का है, लेकिन ऐसे 5000 साल का काल चक्र इस पृथ्वी के ऊपर कितनी बार घूम चुका है? अनगिनत बार। तो पृथ्वी तो करोड़ों साल पुरानी है ही ना, तो पत्थर मिलेंगे उसमें कौन सी बड़ी बात है? इसीलिए आर्कियोलॉजी वाले भी सही है, और ब्रह्मा कुमारी इसकी फिलॉसफी के आधार पर अगर देखा जाए तो 5000 साल का एक काल चक्र ये भी सही है। ये 5000 साल का काल चक्र किस तरह चलता है उसको दिखाया गया है स्वास्तिका के रूप में। स्वास्तिका हर शुभ कार्य के लिए लगाया जाता है। स्वास्तिका का मतलब है सुअस्ति, सुअस्ति, सु यानी शुभ, अस्ति यानी जो है, जो सदा ही शुभ है। यानी ये काल चक्र की हर घड़ी सदा ही शुभ है, कोई घड़ी बुरी है ही नहीं। इसीलिए गीता के सार में भगवान ने यही कहा कि हे अर्जुन, जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो भी बहुत अच्छा, तुम निश्चिंत रहो, नथिंग इज बैड। तीनों घड़ी अच्छी है, जो बीत चुकी वो भी अच्छी है, जो चल रही है वो भी अच्छी है, और जो आने वाली है वो भी बहुत अच्छी है। तुम निश्चिंत रहो, बुरा कुछ है ही नहीं संसार के अंदर, कोई घड़ी बुरी है ही नहीं। लेकिन तब कई बार कई लोग हमसे कहते हैं कि बहन जी, कोई कोई घड़ियों को देख करके हमें लगता है ये तो बहुत बुरा हो गया, ऐसा तो किसी के साथ नहीं होना चाहिए, उसको अच्छा कैसे समझा जाए। मुझे याद आता है कि एक बार एक भाई थे, उनका कार एक्सीडेंट हुआ, दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए, हॉस्पिटल में थे। जब हमें पता चला तो सोचा मिलके आते हैं। जब हम गए, काफी लोग वहां थे, अब जाएंगे तो क्या कहेंगे, सहानुभूति के कुछ शब्द कहेंगे, तो हमने उस भाई से कहा भगवान को याद करो, सब ठीक हो जाएगा। उसको इतना गुस्सा आया कि भगवान का नाम नहीं लो मेरे सामने, भगवान बहुत बुरा है, सबका बुरा करता है। आश्चर्य लगा क्योंकि कोई नास्तिक नहीं बोल रहा था, भगवान में आस्था रखने वाला बोल रहा था, इसलिए आश्चर्य लग रहा था। बार बार उसके मुख से एक ही बात निकल रही थी कि बहन जी, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अरे एक फ्रैक्चर हुआ है, थोड़े दिन में ठीक हो जाओगे, चलना आरंभ कर दोगे, जान तो बच गई। लेकिन उसको ये बात हजम नहीं हो रही थी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। आखिर हमें महसूस होने लगा जितना ज्यादा देर यहाँ खड़े रहेंगे ये भाई का गुस्सा बढ़ता जाएगा, इसलिए बेटर है कि हम बाहर निकल जाएं। तो हम धीरे धीरे सरकते हुए बाहर निकलने लगे। उसकी पत्नी ने देखा तो वो तुरंत आई हमारे पास में और कहने लगी, बहन जी कुछ उल्टा सीधा कह दिया हो तो आप क्षमा कर देना। मैंने कहा एक बात जाननी थी कि भाई तो भगवान में आस्था रखते हैं, एक कार एक्सीडेंट क्या हुआ जो इतना भगवान के ऊपर नाराज होकर के बोल रहे हैं? तो कहा ऐसी बात नहीं है। फिर कैसी बात है? तो उसने बताया वो कोई लायंस का या रोटरी का गवर्नर था और हमेशा समाज के लिए बहुत अच्छा काम करते थे। अब उसका टेन्योर पूरा हो रहा है और जब टेन्योर पूरा होता है तो कोई इंटरनेशनल गैदरिंग होती है, उसको उस गैदरिंग में जाना था और उस गैदरिंग में उसका सम्मान होना था, उसको अवार्ड मिलना था। लेकिन 10 दिन पहले उसको यह कार एक्सीडेंट हो गया। अब 10 दिन के अंदर तो ठीक होके नहीं जा सकता, दोनों पैर फ्रैक्चर थे, कैसे ठीक होकर के जा सकता है? तो इसलिए बार बार उसके सामने वही दृश्य आ रहे थे कि अरे इतने बड़े बड़े दुनिया भर से लोग वहां आएंगे, उन सबके बीच में मेरा सम्मान होता था, मुझे अवार्ड मिलता था और अब कुछ भी नहीं मिलेगा। ये मौका मेरे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा गर्व था और अब कुछ भी नहीं। इसलिए उसको गुस्सा आ रहा था कि बहन जी, मैंने कर्म किया, फल लेने का समय आया तो भगवान ने मेरे हाथ से फल क्यों छीन लिया? हमारे सामने सामने किसी ने उसको कह दिया, भगवान को क्यों गाली देता है, कर्म का हिसाब किताब भी तो हर एक का अपना होता है, वो तो भोगना ही पड़ता है। उसको और गुस्सा आया कि कर्म का हिसाब किताब मैं कहां मना करता हूं, लेकिन वहां से आने के बाद भगवान हिसाब किताब नहीं ले सकता था, पहले ही लेना था। अब उसको कैसे समझाएं? आखिर हम तो वहां से चले गए। 8-10 दिन के बाद गुरुवार का दिन था, सोचा चलो बाबा को अब भोग लगा है, भाई के लिए भोग ले जाते हैं, हो सकता है भाई की मानसिक स्थिति ठीक हुई हो। तो जब हम गए तो और कोई नहीं थे, वो और उसकी पत्नी दो ही थे। जैसे ही हमको देखा तो कहने लगा, आओ बहन जी आओ, देखो भगवान जो करता है ना अच्छा ही करता है। क्या हुआ? तो उसने न्यूज़पेपर उठाकर दिखाया, जिस फ्लाइट में मैं जाने वाला था वो फ्लाइट क्रैश हो गया, सारे लोग खत्म हो गए। और फिर इतनी अच्छी अच्छी बातें करने लगा, कहने लगा कि बहन जी अगर मैं उसी फ्लाइट में जाता, ये छोटा सा एक्सीडेंट नहीं होता था ना, तो उसी फ्लाइट में होता था। अवार्ड तो मिलना ही नहीं था, जीवन भी चला जाता था। लेकिन क्योंकि मैंने किसी का बुरा नहीं किया ना, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। 10 दिन पहले यही सवाल कर रहा था, मेरे साथ ही ऐसे क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, और अभी खुद ही जवाब देता है, क्योंकि मैंने किसी का बुरा नहीं किया था इसीलिए मेरे साथ ही ऐसा हुआ कि ये छोटा सा एक्सीडेंट करके भगवान ने मुझे रोक लिया। आज मुझे महसूस होता है कि भगवान ने मुझे सबसे बड़ा अवार्ड जीवन में दिया, एक नया जीवन दान दिया। इससे बड़ा अवार्ड और क्या हो सकता है। जब ऐसी अच्छी अच्छी बातें कर रहा था तो उसकी पत्नी ने मुझे कहा, बहन जी यही ज्ञान अगर 10 दिन पहले आ जाता तो कितना अच्छा होता। मेरे जीवन के सबसे बुरे दिन गए ना, ये 10 दिन गए। न जाने भगवान को तो कितनी गाली दी है, लेकिन जो आता था भगवान का नाम लेता था उसके ऊपर भी गुस्सा निकाल देते थे। हर एक की सहन शक्ति एक जैसी तो नहीं होती है, कई बार तो संबंध खराब होने जैसी स्थिति हो जाती थी। एक एक को बाहर ले जाकर मुझे हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ती थी। वो बहन ने कहा, जिंदगी में मैंने अपने कर्मों के लिए इतनी माफी किसी से नहीं मांगी जितना इसके कर्मों के लिए मांगनी पड़ी। मेरे जीवन के सबसे बुरे दिन ये 10 दिन गए, इतना स्ट्रेस में गया, क्या बताऊं। तो ये ज्ञान पहले क्यों नहीं आता है। मैंने कहा, समय का शुक्र करो कि समय ने 10 दिन के अंदर पर्दा खोल दिया कि क्या अच्छा समाया हुआ था। कई घटनाएं जीवन में ऐसी घटती है कि समय एक साल के बाद पर्दा खोलता है। वो साल कैसा जाता है, साल के बाद जब समय का पर्दा उठता है तो यही कहते हैं, अच्छा हुआ था ऐसा हुआ तो, नहीं तो आज पता नहीं क्या हो जाता, कहते हैं ना। तो पहले ही कह दो। अगर ये गीता के महावाक्य को अप्लाई करना आ जाए जीवन के अंदर तो फ्रस्ट्रेशन होगा। जो हुआ वो अच्छा, जो हो रहा है वो अच्छा, जो होने वाला है वो बहुत अच्छा। ये बात अगर अप्लाई करना आ जाए वक्त पर तो फ्रस्ट्रेशन होगा, स्ट्रेस होगा, गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन आएगा, तनाव होगा, नहीं होगा। जो हुआ अच्छा ही हुआ, न किसी के साथ संबंध खराब होगा, न फ्रस्ट्रेशन आएगा, न गुस्सा आएगा, न तनाव होगा, कुछ भी नहीं होगा। गीता के ये महावाक्य कितने सालों पहले कहे हुए हैं। घरों में हमारे पास ये गीता सार लिखा हुआ होगा, लेकिन जीवन में उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना नहीं आता है। इसलिए जीवन में कई बातें हजम नहीं कर पाते हैं। बाकी अगर ये बात हजम हो जाए और ये काल चक्र हमें यही सिखाना चाहता है कि जीवन की हर घड़ी अच्छे से अच्छी ही है, बुरा कुछ है ही नहीं, हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हैव पेशेंस, वेट फॉर टाइम। समय जब पर्दा उठाएगा तब पता चलेगा कि क्या कल्याण समाया हुआ है। क्यों हम एकदम इम्पेशेंट होकर के, एकदम धीर्य होकर के रिएक्ट करना आरंभ करते हैं? तो काल चक्र हमें क्या कहता है। इस काल चक्र को दिखाया गया है स्वास्तिका के रूप में, क्लॉकवाइज चलता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कल युग, कब शुरू हुआ ये चक्र पता नहीं। जैसे दिन और रात का चक्र कब शुरू हुआ मालूम नहीं, लेकिन उसका पहला पहर सुबह को माना जाता है। ठीक इसी तरह ये काल चक्र कब शुरू हुआ पता नहीं, लेकिन उसका पहला पहर सतयुग को माना जाता है, जहां संपूर्ण सत्यता थी, जहां स्वास्तिका का हाथ राइट हैंड साइड पर इस पोजीशन में, यानी आशीर्वाद, जहां हर आत्मा ब्लेसेड सोल के रूप में थी, ईश्वर से वरदान प्राप्त की हुई स्थिति में थी। वो दुनिया कैसी थी, उस दुनिया के लिए दिखाया गया है कि उसी को ही दूसरे शब्द में सूर्य वंश कहा जाता है, कि जैसे सूर्य की कला कम जास्ती नहीं होती, ऐसे आत्माओं की कला भी कम जास्ती नहीं होती है, संपूर्ण है, सतो प्रधान है। इसी युग के लिए बाइबल में एक बहुत सुंदर लाइन आती है जेनेसिस चैप्टर 1 में, कि परमात्मा ने जब ये पहला पहर बनाया था तो कैसा था, तो उसमें लिखा है कि गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, परमात्मा ने मनुष्य को अपनी कृति में बनाया था। कि जिस तरह परमात्मा संपूर्ण है, ऐसे उसकी प्रथम कृति भी संपूर्ण थी। किसको बनाया? गॉड मेड मैन, क्योंकि सतयुग से पहले कलयुग था, कलयुग में मनुष्य थे, तो गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, जिसको गॉड्स एंड गॉडेसेस के रूप में हम पूजा करते हैं, भगवान भगवतियों के रूप में पूजा जाता है। उसी बात को हिंदू धर्म में भी कहा हुआ है कि नर ऐसी करनी करे जो नर नारायण बने। कलयुग में नर है, सतयुग में नारायण है, तो नर ऐसी करनी करे जो नर नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बने। नर से सुनारायण, नारी से सुश्री लक्ष्मी। उसी बात को गुरु नानक देव ने बहुत सुंदर कहा है कि मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार, कि भगवान को मनुष्य से देव बनाने में देर नहीं लगती है। तो हर धर्म में किसी न किसी रूप से यह चक्र का संकेत जरूर है कि कलयुग से ट्रांसफॉर्मेशन सतयुग की ओर कैसे होता है और वो दुनिया कैसे बनती है, वो बात को दर्शाया गया है। उस बात को सिर्फ हम रिलेट नहीं कर पाए या समझ नहीं पाए। उसी दुनिया के लिए बहुत सुंदर वर्णन है कि वो दुनिया कैसी थी, तो जहां शेर और गाय घाट पर पानी पीते थे, ऐसी पवित्र दुनिया थी। सोचो जब एनिमल्स में इतनी हार्मनी हो, तो उस समय के मनुष्य कितने डिवाइन होंगे, कितने श्रेष्ठ होंगे, पवित्र होंगे। जहां संपूर्ण सुख शांति व्याप्त थी और समृद्धि ऐसी थी कि दूध घी की नदियां बहती थी, हर आत्मा अपने समृद्ध स्थिति में थे। पवित्र आत्माएं ऊपर से नीचे उतरती है, कोई ना कोई देवी या देवता का रूप धारण कर लेती। ऐसी एक पवित्र दुनिया थी, सत्यता की दुनिया थी, जहां असत्यता का नामो निशान नहीं था। प्रकृति, पशु और मनुष्य तीनों हार्मनी में जीते थे। ऐसी सात्विक दुनिया कितनी सुंदर, जिसको हर धर्म में किसी ने स्वर्ग कहा, वैकुंठ कहा, बहिष्ट कहा, जन्नत कहा, पैराडाइज कहा, हेवन कहा, अटलांटिस कहा, हर धर्म में जिसका गायन आता है, इतनी सुंदर वो दुनिया थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, सृष्टि नाटक का दूसरा भाग आया, जिसको कहा जाता है त्रेता युग, जहां आत्माओं की कला कम हो गई। त्रेता युग माना चंद्र वंश जहां आए, और सतयुग के अंदर श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य था। कैसे पता चला श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य था? तो नारायण के साथ हमेशा एक प्रीफिक्स लगता है, सत्य नारायण या सूर्य नारायण। सत्य नारायण, सूर्य नारायण इसीलिए कहा जाता है कि जो सतयुग के राज्य करता है, सूर्य वंशी है, इसीलिए उसको सत्य नारायण, सूर्य नारायण कहा जाता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, सृष्टि नाटक का दूसरा भाग आया, जिसको कहा त्रेता युग, चंद्र वंश जिसको कहते, जैसे चंद्रमा की कला कम हुई, आत्माओं की कला भी कम हुई, 16 कला से 14 कलाधारी बने। पवित्रता, सुख शांति, समृद्धि इस दुनिया में भी है, लेकिन सतयुग जितनी परफेक्शन नहीं है, इसलिए त्रेता, त्रेता माना थोड़ी त्रुटि आ गई आत्माओं में। 16 फिगर परफेक्शन का है, 16 कला से 14 कलाधारी बने। और इस दुनिया में राज्य करने वाले कौन थे? तो श्री राम और श्री सीता का राज्य था। कैसे पता चला श्री राम और श्री सीता का राज्य था? तो श्री राम के साथ शब्द जुड़ता है, श्री रामचंद्र। इसीलिए दिखाते श्री राम के पूर्वज सूर्यवंशी थे, सूर्य का तिलक लगाते थे। परंतु जहां से श्री राम आए, दूसरा युग आरंभ हो गया, त्रेता युग, जिसको आज भी लोगों ने याद किया राम राज्य के रूप में। राम राज्य का स्वप्न देखा कि चलो सतयुग जितनी परफेक्शन न ला सके हम भारत में, लेकिन कम से कम राम राज्य जैसा तो बनाए, जहां सुखी था राजा, सुखी थी प्रजा, सुखी था सारा संसार। लेकिन वो भी एक स्वप्न ही रह गया। कई लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि देवताओं ने ऐसे कौन से कर्म किए जो दो कला कम हो गई। कोई कर्म की बात नहीं है, संसार एक नियम में चलता है, और वो नियम है जैसे विज्ञान के अंदर थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड प्रिंसिपल है, लॉ ऑफ एंट्रोपी, जिसको डिफाइन किया गया है कि एवरीथिंग मूव्स फ्रॉम एन ऑर्गेनाइज्ड टू अ डिसऑर्गेनाइज्ड स्टेज। हर चीज पहले सुव्यवस्थित होती है, परिवर्तन होकर के अव्यवस्थित होती है। मकान नया होता है, पुराना अपने आप बनता है, खंडर बनाया नहीं जाता है, बन जाता है। कोई भी चीज ऊपर से नीचे अपने आप गिरती है, नीचे से ऊपर उसको चढ़ाना पड़ता है, अपने आप नहीं जाता है, ऊपर से नीचे की ओर आना स्वाभाविक है। कोई भी चीज सदा काल एक ही स्थिति में नहीं रहती है। संपूर्ण खिला हुआ चंद्रमा पूर्णमासी कितना दिन रहता है? एक घड़ी, दूसरी घड़ी से फिर उसकी अमावस्या की ओर यात्रा चलने लग पड़ती है, और अमावस्या में कितनी देर? एक घड़ी, फिर पूर्णमासी की ओर उसकी यात्रा प्रारंभ हो जाती है। चेंज इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, परिवर्तन एक नित्य प्रक्रिया है, और उसी नियम के अनुसार ये देवी देवताएं भी धीरे 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 जो संपूर्णता में थे, अपूर्णता की ओर उनकी यात्रा चलने लग पड़ती है। और इस तरह से संसार का तीसरा भाग आता है, जिसको कहा द्वापर। द्वापर यानी जहां से दो पुर आरंभ हो गया, सत्य माना एकता, एक धर्म, एक राज्य, एक मत, एक भाषा, एकता की दुनिया है। लेकिन जैसे ही द्वापर आया, द्वापर दो पुर आरंभ हो गया, सत्य के साथ असत्य मिक्स होने लगा। स्वास्तिका का हाथ जो आशीर्वाद की पोजीशन में था, द्वापर युग में इस पोजीशन में आ गया, लेफ्ट हैंड साइड, इस पोजीशन में, यानी मांगना आरंभ किया हमने। किससे मांगना आरंभ किया? परमात्मा से। क्योंकि सत्य के साथ जैसे ही असत्य मिक्स होने लगा तो मतभेद हुआ, मतभेद के साथ साथ कलह क्लेश हुआ, और कलह क्लेश आरंभ होने से दुख अशांति बढ़ने लगी। और तब कहा गया, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई, अगर सुख में करे तो दुख काहे को होए। यानी सतयुग और त्रेता युग जो संपूर्ण सुख का पीरियड था, उस वक्त भगवान को किसी ने याद नहीं किया, इसीलिए संसार में दुख आया। अगर उस समय सतयुग और त्रेता युग में भगवान को याद करते थे तो दुख काहे को आता था? तो दुख आने का कारण भी परमात्मा की विस्मृति, विस्मृति हो गई, भूल गए। अब परमात्मा का परिचय किसी के पास नहीं, दो युग तक तो याद करने की आवश्यकता ही महसूस नहीं हुई। तो जब किसी के पास परिचय ही नहीं है तो किसको भगवान माने। तो जैसे आजकल की दुनिया के अंदर कई संतों के भी मंदिर बनाए जाते हैं, अगर मनुष्य से पूछा जाए कि ये संत तो हमारे जैसे इंसान ही तो थे, फिर उसके मंदिर क्यों बनाए जाते हैं, तो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, संतों के मंदिर क्यों बनाए जाते हैं, क्यों बनाया जाता है, कहते हैं हमसे तो वो श्रेष्ठ थे इसलिए मंदिर बनाए जाते थे, हमसे वो श्रेष्ठ थे, पूजनीय थे इसलिए मंदिर बनाए गए। ठीक इसी तरह जो द्वापर युग में आत्माएं आ गई उनसे श्रेष्ठ पूजनीय कौन था, सतयुग और त्रेता युग के देवी देवता हैं। तो भगवान का परिचय नहीं था तो उन देवी देवताओं को ही परमात्मा मान करके उनकी पूजा आरंभ कर दी। और इस तरह से देखा जाता कि जो मनुष्य एक श्रेष्ठ स्थिति में थे वो जैसे जैसे द्वापर युग में आए, दुख अशांति महसूस हुई, देह अभिमान के वश हुए, तो जो उनके पूर्वज हो गए पूजनीय उनके ही मंदिर बना करके पूजा करने लग पड़े। क्योंकि इस संसार में बुराइयों ने अपना घर आरंभ कर दिया, अपना स्थान लेना शुरू कर दिया, और उसमें भी देह अभिमान अहंकार। उसी वक्त में शास्त्रों का निर्माण हुआ, मंदिर बनाए गए, पूजा पाठ की रीत रस्म रिवाज आरंभ हुए, और इस तरह भारत में भक्ति मार्ग आरंभ होता है, भक्ति मार्ग शुरू होता है। लेकिन भारत से बाहर दुनिया के अंदर क्या हुआ, तो दुनिया के अंदर कुछ महान आत्माओं का अवतरण होता है कि जिसने कहा कि हम परमात्मा के पैगंबर हैं, पैगाम लेकर के आए हैं। तो भारत से बाहर तीन महान धर्म पिताएं आते हैं ईश्वर का पैगाम लेकर के, पैगंबर। उन्होंने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा, हमेशा यही कहा हम भगवान का पैगाम लेकर के आए। सबसे पहले इब्राहिम आए जिसने इस्लाम धर्म की स्थापना की, उसके बाद महात्मा बुद्ध आए जिसने बौद्ध धर्म की स्थापना की, और उसके बाद क्राइस्ट आए जिसने क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की। तो भारत में भक्ति मार्ग आरंभ हुआ, देवी देवताओं की पूजा आरंभ हो गई, भगवान का परिचय किसी के पास नहीं था। और इन लोगों ने भी कहा हम परमात्मा का पैगाम लेकर के आए, और इसलिए कोई भी धर्म को अगर देखा जाए तो कोई भी धर्म के असली सिद्धांत एक जैसे ही होते हैं। कोई धर्म हमें बुराई करना नहीं सिखाता, कोई धर्म हमें बुरे कर्म करना नहीं सिखाता है, पाप करना नहीं सिखाता है। असली हर धर्म के सिद्धांत एक जैसे हैं। फिर ये धर्म अलग अलग क्यों हो गए? क्योंकि ये महान आत्माएं जिस समाज में गए थे उस समाज में उन्होंने कुछ बातें देखी, और उन बातों के हिसाब से उन्होंने कुछ प्रचार आरंभ किए। वो प्रचार अलग अलग थे इसलिए ये बंटवारा हो गया, मेरा धर्म तेरा धर्म। बाकी धर्म तो अच्छाई ही सिखाता है, धर्म कभी किसी को बुराई सिखाता नहीं है, बुरा आचरण नहीं सिखाता है। लेकिन इन लोगों के जो प्रचार थे वो अलग अलग थे। जैसे जहां इब्राहिम गए थे उस समाज की व्यवस्था कैसी थी, तो उस समाज में मनुष्य जीवन के लिए कोई सिद्धांत नहीं थे, तो उन्होंने जीवन जीने के सिद्धांत दिए जो आज भी उनके पवित्र धर्म पुस्तक में लिखे हैं। लेकिन अफसोस उस समाज के लोगों ने उस बात को समझा नहीं। इसी तरह महात्मा बुद्ध जहां गए थे वहां उन्होंने दो बातें देखी जिस पर उन्होंने अपने प्रचार किए। कौन सी दो बातें? पहली बात यही देखी कि मनुष्य जीवन में दया नाम की चीज नहीं है, और दूसरी बात देखी कि मनुष्य के कर्म भ्रष्ट होने लगे हैं। तब उन्होंने अपने प्रचार में यही कहा, दया ही धर्म है, दया धर्म का मूल है। प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखो और कर्म अच्छे करो, कर्म ही धर्म है। कर्म का प्रचार किया, कर्म को अच्छा करने का प्रचार किया, ये महात्मा बुद्ध की टीचिंग्स रही। लेकिन अफसोस, फार ईस्टर्न दुनिया के अंदर देखा जाए, महात्मा बुद्ध को बहुत मानते हैं, लेकिन महात्मा बुद्ध की नहीं मानते हैं। जैसे भारतवासी गीता को मानते हैं, गीता की नहीं मानते हैं। ऐसे गली गली में महात्मा बुद्ध के मंदिर जरूर मिलेंगे, लेकिन महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को नहीं मानते हैं। आज भी अगर कोई भी चाइनीज कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट में चले जाओ, क्या खाते हैं लोग, क्या खाते हैं, क्या खाते हैं? जो दुनिया के कोई नहीं खाते ना, वो ये लोग खाते हैं। आप सोचेंगे बहन जी को कैसे पता। कुछ समय पहले मेरा हांगकांग चाइना तरफ जाना हुआ था, और जैसे बम्बई की चौपाटी बहुत मशहूर है, ऐसे हांगकांग की चौपाटी भी बहुत मशहूर थी एक समय में। अभी नहीं मिलेगा आपको वहां पर, लेकिन एक समय में थी। तो मेरा एक कार्यक्रम था आइलैंड पर, तो गाड़ी पार्क करके हम बोट लेना था, तो 10 मिनट उस चौपाटी से गुजरना पड़ा। तो 10 मिनट जब उस चौपाटी से गुजरे, तो वहां का जो नजारा देखा मुझे कभी भूलता नहीं है। कहां देखा, लंबे लंबे रंग बिरंगी सांप लटक रहे थे, है ना? उसको तवे पर रख के फ्राई किया जा रहा है, लोग बड़े चाव से खाते। चाइना में लोग घर में खाना नहीं बनाते, इसलिए उनका किचन जो है बहुत छोटा होता है। घर में फ्लैट जो होता है, रूम्स अच्छे होते, लेकिन किचन सबसे छोटा एक पेंट्री जैसा होता है, खाली चाय कॉफी बनाने के लिए, क्योंकि खाना वो घर में बनाते नहीं है, बाहर ही खाते हैं। तो लोग खास खाने के लिए बाहर जाते हैं, तो चाव से खाते हैं। कहां देखा तो बड़े बड़े खेखड़े तले जा रहे थे, कहां देखा तो बिच्छू की सब्जी बनाई जा रही थी, कहां देखा तो कॉकरोच की चटनी पीसी जा रही थी। तो तब मुझे महसूस हुआ कि महात्मा बुद्ध ने क्यों प्रचार किया था के प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखो। लेकिन अफसोस, ये लोगों ने समझा ही नहीं है ना। और आज तो इंटरनेट के माध्यम से आप सारी दुनिया के अंदर देख सकते हैं। ताइवान के अंदर कहा जाता, मनुष्य के बच्चे को, 10 दिन के 15 दिन के बच्चों को होटल वालों को बेचा जाता है $2,000 में। और वो छोटे से बच्चे को किस तरह बेक किया जाता है, फ्राई किया जाता है। और आज मनुष्य ऐसा हैवान बन गया है, प्राणी मात्र के प्रति तो दया भाव है ही नहीं, लेकिन मनुष्य अपने बच्चे को खाने में भी हिचकिचाता नहीं है। ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, ये बच्चों के ह्यूमन राइट्स कहाँ गए? क्या उनको जीने का अधिकार नहीं है? तो महात्मा बुद्ध को मानते हैं, महात्मा बुद्ध की नहीं मानते हैं। और इसी तरह जहां जीसस गए थे, उस समाज की व्यवस्था कैसी थी? उन्होंने भी दो बातों को देखा जिस पर उन्होंने अपने प्रचार किए। कौन सी दो बातें देखी? कि मनुष्य जीवन में इतनी नफरत है, मनुष्य को मनुष्य के प्रति नफरत है। और दूसरी बात देखी कि मनुष्य जीवन में इतना झूठ व्याप्त हो गया है। तब इन्हीं दो बातों पर उसने प्रचार आरंभ किया कि प्रेम ईश्वर है, सत्य ईश्वर है। प्रेम और सत्य को ईश्वर के बराबर का दर्जा दे दिया, ये दो वैल्यूज को। लेकिन अफसोस, उस समाज के लोगों ने इस बात को समझा नहीं। और प्रेम और सत्यता का संदेश देने वाले क्राइस्ट के साथ क्या किया? उसी को क्रॉस पर चढ़ा दिया। कितना नफरत पूर्ण व्यवहार करके उसको क्रॉस पर चढ़ाया गया, सारी दुनिया के सामने ये प्रत्यक्ष कर दिया कि हम अपने धर्म पिता को नहीं बख्शते हैं तो बाकी किसको बख्शेंगे, है ना। और इसलिए जहां पर भी गए, गए थे मर्चेंट्स के हिसाब से दुनिया में, लेकिन वहां जाने के बाद झूठ और नफरत के बीज बोए और उस देश का सारा राज्य अपने हाथ में ले लिया। और राज्य देने वक्त क्या किया, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, नफरत के बीज बोए, देश के टुकड़े किए, नॉर्थ साउथ कहां, ईस्ट वेस्ट कहां, दो देश ही बना डाले। और नफरत के बीज ऐसे बोए जो कोई बात पर समाधान ही नहीं होता है, क्योंकि कारण हो तब तो निवारण हो, कारण ही नहीं तो निवारण कहां से होगा। और इस तरह से ये संसार आगे बढ़ता गया। सृष्टि नाटक का चौथा भाग आया जिसको कहा कलह क्लेश वाला युग, जहां स्वास्तिका का हाथ ऊपर उठता है, हर प्रकार की बुराई अपनी चरम सीमा को प्राप्त कर लेती है। अति धर्म भ्रष्ट, अति कर्म भ्रष्ट, अति अत्याचार, अति पापाचार, अति दुराचार, अति भ्रष्टाचार, हर प्रकार की अति हो जाती है। ऐसा जब अति का समय आता है तो उस अति के समय में परमात्मा को भी तो आना पड़ेगा, यदा यदा ही धर्मस्य। तो हर युग में आने की बात नहीं है, जब अति का समय होता है तब परमात्मा इस संसार में अवतरित होते हैं। इसलिए इस दुनिया को कहा जाता है रावण राज्य। जहां राम राज्य था वहां रावण राज्य नहीं था, और आज जहां रावण राज्य है वहां राम राज्य नहीं है। इसको रावण राज्य क्यों कहा जाता है, क्योंकि रावण कहा जाता है कि कोई असुर नहीं था, ब्राह्मण था, ऊंची जाति का था, रावण जैसा विद्वान कोई नहीं, 10 इंसानों जितनी बुद्धि थी उसके पास, शास्त्रों का ज्ञाता था, बहुत विद्वान था, रावण जैसा शक्तिशाली कोई नहीं, ब्रह्मास्त्र, अग्नि अस्त्र, वायु अस्त्र, ये विभिन्न अस्त्र उसको प्राप्त हुए थे तपस्या की शक्ति के माध्यम से। रावण जैसा भक्त भी कोई नहीं मिलेगा, खूब भक्ति करता था, शिव भक्त था, और रावण जैसा धनवान भी कोई नहीं, पूरी सोने की लंका थी। जीवन की जो चार आवश्यकता मानी जाती है चारों ही रावण के पास थी, अर्थ, बल, बुद्धि और भक्ति। लेकिन फिर भी उसका सर्वनाश हुआ, क्यों? क्योंकि दो बातों की कमजोरी थी उसकी। कौन सी? अहंकार चरम सीमा पर था और चरित्र भ्रष्टता उसके अंदर आ गई, अनैतिकता। और ये दो बातों के कारण उसका सर्वनाश हुआ। आज की दुनिया भी रावण राज्य है। क्यों? क्योंकि सभी प्राणियों में उत्तम प्राणी कौन है? मनुष्य उत्तम प्राणी है। मनुष्य जैसा विद्वान कोई नहीं है, बहुत इंटेलिजेंट है। आज आज बच्चों का आईक्यू निकालो, लोगों का आईक्यू निकालो, कितना आईक्यू है उनका, इतना हाई आईक्यू लेवल है ना। मनुष्य हवा में उड़ने लगा है, आकाश मार्ग से जाने लगा, समुद्री मार्ग से जाने लगा है रावण की तरह, है ना। इतनी बुद्धि है, ऐसा विकास किया है उसने। मनुष्य जैसा शक्तिशाली कोई नहीं, मिसाइल पावर है, अग्नि अस्त्र, वायु अस्त्र, पृथ्वी अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, मिसाइल्स के नाम है जो मनुष्य ने भी अपनी तपस्या से उसको बनाया है। मनुष्य जैसा भक्त भी कोई नहीं मिलेगा, गली गली में मंदिर है, एक ही गली में कितने मंदिर मिलेंगे, खूब भक्ति कर रहा है, और मनुष्य जैसा धनवान भी कोई नहीं, रात्रि के समय में अगर बड़े शहरों का नजारा देखा जाए तो सोने की लंका से कम चमकदार भी नहीं। पॉम्प एंड ग्लैमर की दुनिया है ना? हवाई जहाज से नीचे देखो तो जैसे सोने की दुनिया चमक रही हो पूरी, ऐसा नजारा दिखाई देता है। तो इसलिए कहा आज मनुष्य के पास भी चारों ही शक्ति है, अर्थ, बल, बुद्धि और भक्ति, लेकिन फिर भी मनुष्य किस ओर आगे बढ़ रहा है? अपने ही सर्वनाश की ओर। क्यों? क्योंकि आज मनुष्य जीवन में भी दो बातों की कमजोरी आ गई, अहंकार चरम सीमा पर है और चरित्र भ्रष्टता आ गई है, अनैतिकता। और जब ऐसी स्थिति आ जाती है दुनिया के अंदर तो मनुष्य भी अपने सर्वनाश की ओर आगे बढ़ रहा है। इसलिए कहा ये रावण राज्य है। जब राम राज्य था तब रावण राज्य नहीं था, और जब रावण राज्य है तो राम राज्य कहीं नहीं दिखाई देगा। इसी समय की बात है, लोगों ने इस बात को जोड़ दिया, जहां राम था वहां रावण था, जहां कृष्ण था वहां कंस था। अरे नहीं, एक ही समय में दिन और रात नहीं हो सकता, एक ही स्थान पर नहीं हो सकता है। जब दिन है तो रात नहीं, रात है तो दिन नहीं। इसी तरह जब देव है तो असुर नहीं, असुर है तो देव नहीं है। और आज असुरी वृत्तियां जिस तरह से व्यापक है तो दैवी वृत्तियां नहीं है, संसार के अंदर समाप्त हो गई है। इसलिए समय की पुकार है, दैवी वृत्तियों को जागृत करो। ऐसा जब समय आ जाता है जहां हर इंसान अपने आप को बंधन में महसूस करता है और हर प्रकार का बंधन आज दिखाई देता है, किसी को व्यसनों का बंधन है, बुराइयों का बंधन है, बुरी आदतों का शिकार बनता जा रहा है। मनुष्य अपनी वास्तविकता को भूल चुका है और इसीलिए गुलाम बन गया है। कर्मेंद्रिय का गुलाम नहीं खाली, लेकिन विकारों का गुलाम बन गया है। और इन विकारों के गुलामी के कारण उसके जीवन के अंदर जो विकृति आ गई है, जो चेहरे से विकृति नजर आती है, आसुरी वृत्ति आ गई है ना? जब खुद का परिचय नहीं, खुदा का परिचय नहीं, तो परमात्मा को भी कहां ढूंढ रहा है? कहां देखो तो नदियों की पूजा कर रहा है, कहां देखो तो सूर्य की पूजा कर रहा है, कहां देखो तो वृक्षों की पूजा कर रहा है, कहां देखो तो जानवरों की पूजा, किस किसकी पूजा करने लग गया? ऐसा जब हाल हो जाता है, ये है अधर्म की चरम सीमा। न खुद को जानता है, न खुदा को जानता है कि आखिर परमात्मा कौन है। ऐसी जब दुनिया की हालत हो जाती है तो अब बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी बची है। अब ये संसार परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजर रहा है, लेकिन जब ये बात कहते हैं तो लोग क्या कहते हैं? नहीं नहीं, अभी तो कलयुग बच्चा है, 4,32,000 में से खाली 40,000 साल पूरे हुए हैं, अभी तो कितने लाखों साल का बाकी है समय। अब सोचने की बात तो ये है कि अगर लाखों साल बाकी हो और अभी ही ऐसी स्थिति हो तो बुढ़ापे में क्या होगा? बचपन में ही ऐसी स्थिति हो तो बुढ़ापे में क्या होगा इस कलयुग का? इसलिए अब कलयुग बच्चा नहीं है, अब थोड़ा सा बचा है, अब थोड़ा सा बचा है, ज्यादा समय नहीं है, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी है। वो कवि प्रदीप जी का गीत याद आता है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, है ना? दूसरा एक गीत भी याद आता है, श्री रामचंद्र कह गए सिया से, क्या कह गए? ऐसा कलयुग आएगा जहां क्या नहीं होगा उसका वर्णन किया गया है कि कलयुग के अंतिम चरणों में किस प्रकार के लक्षण होंगे समाज के अंदर मनुष्य के, वो सारा डिस्क्राइब किया है। गरुड़ पुराण में जो कलयुग के अति के लक्षण दिखाए हैं वो सब तो प्रैक्टिकल में दिखाई दे रहे हैं। तो अब कलयुग बच्चा कहाँ है? थोड़ा सा बचा है, लेकिन तब कई बार कई लोग हमसे सवाल करते हैं, बहन जी फिर कितना समय बाकी है? अगर भगवान आपको सारा ज्ञान दे रहा है तो ये भी बताया होगा कि अभी कितना समय बाकी है। आता है ना ये प्रश्न, जानना चाहेंगे कितना समय बाकी है? जानना चाहेंगे? फिर डर तो नहीं जाएंगे, डर तो नहीं जाएंगे। हम यही कहते हैं कि भगवान ने हमें सारा ज्ञान दिया, लेकिन ये बहुत अच्छा काम किया जो डेट नहीं बताई कि कब ये दुनिया खत्म होने वाली। क्यों? अगर किसी को कहा जाए कि तुम्हारे पास 24 घंटा है, 24 घंटे के बाद तुम मर जाओगे, तो पहले ही मर जाए शायद इतना। और उसको कहे 24 घंटा है, जितना भगवान का नाम लेना चाहो ले लो, कितना ले सकेगा? गॉड कॉन्शियस नहीं हो सकता, टाइम कॉन्शियस जरूर हो जाएगा। कितना समय बाकी है, कितना समय बाकी है, कितना समय बाकी है। उसको कहो चलो तू भगवान का नाम नहीं ले सकता है, तेरे पास जो कुछ भी है दान करके पुण्य तो कमा ले, कितना दान कर सकेगा? ये भी नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर 24 घंटे के बाद नहीं मरा तो समय पर भरोसा नहीं है ना। तो न भगवान का नाम ले सकता है, न दान पुण्य कर सकता है, कुछ नहीं कर सकेगा। इसलिए भगवान ने भी हमें टाइम नहीं बताया कितना टाइम बचा है, खाली इतना जरूर कहा बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी है अभी, अब ज्यादा वक्त नहीं है। अब दुनिया के वैज्ञानिक लोग भी चिंतित हो रहे हैं, जिस तरह से पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रही है, ओजोन लेयर्स के होल्स बढ़ते जा रहे हैं। कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया खंड जितना होल हो गया है ओजोन लेयर में, जिस कारण सूर्य की डायरेक्ट रोशनी पृथ्वी पर आ रही है, ग्लोबल वार्मिंग जिस तरह से हो रहा है, वैज्ञानिक लोग इतने चिंतित हैं कि अब ये दुनिया को किस तरह बचाया जाए, उनके पास कोई माध्यम नहीं है। ऑक्सीजन का सोर्स कटता जा रहा है। हमारा एक कार्यक्रम था देहरादून में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, तो जब वहां गए तो वो म्यूजियम दिखाने हमें ले चले, फॉरेस्ट की म्यूजियम पूरी हिस्ट्री बताने लगे। लास्ट में मैंने उनसे पूछा कि जिस तरह पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, ये पॉपुलेशन को जीवित रहने के लिए कितना परसेंट फॉरेस्ट होने चाहिए? तो उन्होंने कहा कम से कम 33% फॉरेस्ट होने चाहिए। मैंने पूछा अभी कितने परसेंट फॉरेस्ट है, तो कहा ऑन पेपर 14%, प्रैक्टिकल में 11%, और ये भी अगर 9% हो गया ना तो ह्यूमन सर्वाइवल इज इम्पॉसिबल, क्योंकि रात्रि के समय में जब पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन खींचते हैं तो आधी रात के बाद खाली 2% ऑक्सीजन रह जाता है। इसीलिए तो साइलेंट अटैक, अस्थमा अटैक रात्रि के, ऑक्सीजन नहीं है। अब 11 से 9 होने में कितना समय लगेगा? लाखों साल लगेगा? नहीं। इसलिए कहा बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी बची है, अब ज्यादा वक्त नहीं है। जिस तरह प्राकृतिक असंतुलन की स्थिति आ गई है और इस कारण से बड़े पैमाने पर भूकंप आ रहे हैं, ज्वालामुखी फट रही है, सुनामी लहरें उठ रही है, चक्रवात तूफान आ रहे हैं, और जो मिसाइल्स बनाए हुए रखने के लिए तो नहीं बनाए हैं ना, सारे कंप्यूटराइज कंट्रोल है, एक बटन दबाने की देरी पर आ गया है। अब जो व्यक्ति सारा समय वो कंप्यूटर के पास बैठता है देखने के लिए कि कहीं से मिसाइल आया कि नहीं हमारी एयर स्पेस में, अगर घर में कभी झगड़ा हुआ या उस व्यक्ति को सिज़ोफ्रेनिक अटैक आया तो क्या करेगा? हाँ, सोचेगा दबा दो बटन, खत्म करो खेल, मरो और मारो सब, कितनी देर लगेगी। इसीलिए कहावत है, नर चाहत कुछ और होवत कुछ और, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पो। अभी भगवान ये संसार को, ये समय को, कलयुगी सृष्टि को डिस्पोज करना चाहते हैं। क्या आप नहीं चाहते हैं कलयुग डिस्पोज हो और सत्युग आए? हाँ, चाहते हैं या नहीं चाहते? इसी जागृति के, इसी अवेकनिंग के लिए तो ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया कि कम से कम आप समय के विषय में समझो कि ये समय क्या कह रहा है, क्या संकेत दे रहा है। और ऐसा जब समय आ जाता है तो जो भगवान ने गीता में वायदा किया है कि यदा यदा ही धर्मस्य, मैं भी ऐसे समय पर इस संसार में अवतरित होता हूँ। संसार में तो क्या, भारत में, और भारत में भी एक साधारण मनुष्य तन में, और आकर के ज्ञान और योग की शिक्षा देकर के यही कहते हैं अब चलो बच्चे घर जाने का समय आ गया है। वी आर ऑन अ रिटर्न जर्नी नाउ। अभी होलसेल में मौत का प्रोग्राम देखेंगे, अभी छोटे मोटे नहीं होंगे, एक भूकंप होगा, काफी लोग, लाखों लोग खत्म हो जाएंगे, एक सुनामी आएगी, लाख। अब होलसेल में मौत का प्रोग्राम है ना, अब छोटे मोटे नहीं है। भगवान को अब ये संसार को कहा चलो बच्चे अब घर, बहुत समय खेल खेल लिया इस दुनिया के अंदर, 5000 साल खेल लिया, अब तो घर चलो, थोड़ा रेस्ट करो, फ्रेश हो जाओ और नए साइकिल में पुनः क्या एंजल बन करके वापस आना है नीचे इस संसार में। और इसलिए भगवान जब इस संसार में आते हैं तो भगवान भी सिर्फ दो बातें कहते हैं, लेकिन अफसोस कि आज के समाज के लोग भी सिर्फ वो दो बातें नहीं समझ पाते। क्या कहते हैं भगवान? भगवान यही कहते हैं आत्मशुद्धिकरण करो, योगी बनो, पवित्र बनो। लेकिन जब ये बात कहते तो लोग क्या कहते हैं? अरे बहन जी, सारे लोग पवित्र हो गए तो दुनिया कैसे चलेगी? अरे दुनिया को चलाने का ठेका हमने थोड़ी लिया है, वो तो ऊपर वाले का है ना, उसको पता है दुनिया कैसे चलानी है, हम क्यों चिंता करें? एक बार मेरा एक कार्यक्रम था एक शहर में, 7 दिन की प्रवचन माला थी, बहुत सुंदर कार्यक्रम चला। अंतिम दिन एक बुजुर्ग भाई ने कहा मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ। हमने कहा आइए। स्टेज पर आए, वो सुनाने लगे कि पहली बार मैंने ब्रह्मा कुमारीज का कोई प्रोग्राम अटेंड किया और पूरा 7 दिन मैंने सिंसियरली अटेंड किया ये जानने के लिए कि आखिर भी ये कहना क्या चाहती है, और इनकी एक एक बात में इतनी सच्चाई महसूस हो रही थी। लेकिन 8 दिन तक उनके द्वार से हम गुजरते नहीं थे। मैंने कहा ऐसी क्या बात आ गई जो आप द्वार से गुजरते नहीं थे, ब्रह्मा कुमारी के आश्रम से गुजरते नहीं थे, क्या बात है? तो उसने कहा इनके बारे में समाज में एक गलत फहमी फैली हुई है, उस कारण से हम नहीं गुजरते थे। क्या गलत फहमी है? तो बताया कि हमें ये बताया जाता था बचपन से कि ये लोग भाई बहन बना देते हैं। हमने कहा ब्रह्मा कुमारियों को क्या पड़ी है किसको भाई बहन बनाने की, हम किसी को भाई बहन नहीं बनाते हैं। फिर मैंने उनको प्रश्न पूछा कि आप मंदिर तो रोज गए होंगे, तो कहाँ गए। मैंने कहा एक प्रार्थना तो रोज गाई होंगी, बोले कौन सी। मैंने कहा तुम मात पिता हम बालक तेरे रोज ही गाया कि कुछ और गाया? रोज ही गाया। मैंने कहा आपके परिवार वालों ने, बोले उन्होंने भी यही गाया कि तुम मात पिता हम बालक तेरे। मैंने कहा उस समय कौन बन गए थे, क्या आपकी पत्नी ने कुछ और गाया? कि मेरे पति के मात पिता तो मेरे सास ससुर, कभी ये संबंध जोड़ा क्या भगवान के साथ? और ये प्रार्थना ब्रह्मा कुमारियों ने सिखाई थी क्या? तो क्यों ब्रह्मा कुमारियों को बदनाम करे? ब्रह्मा कुमारियों ने तो ऐसी कोई प्रार्थना आपको 3 दिन में कुछ सुनाया ऐसा?
कि भाई बहन बन जाओ। हम क्यों ऐसे कहेंगे? हमने कभी किसी को नहीं कहा। परमात्मा का संदेश जरूर देते हैं, करना न करना आपके ऊपर है। आज आप सभी तो डॉक्टर्स हैं, आपको क्या मैं बताऊं? नंबर वन पर जो बीमारी चल रही है, कौन सी चल रही है दुनिया में? हाँ, एड्स, जिसका कोई इलाज नहीं है। समय भी संकेत दे रहा है कि आत्म संयम को धारण करो। समय का संकेत है ये, ब्रह्मा कुमारियां नहीं कह रही है। फिर भी मनुष्य विपरीत दिशा में चल रहा है तो किस ओर आगे बढ़ रहा है? उस बीमारी का शिकार होता जा रहा है। आज समय का दूसरा संकेत, समय का दूसरा संकेत है कि न्यूज़पेपर तो हर रोज पढ़ते हैं, एक खबर हर रोज आती है, कामेशु क्रोधेशु मनुष्य के कृत्य रोज आते हैं ना, छपते हैं। प्रैक्टिकल में कितने रेप केसेस होते हैं, छपते कितने हैं? एक दो। आपका विवेक क्या कहता, आने वाले समय में ये कृत्य बढ़ेंगे या कम होंगे? क्या कहता है आपका विवेक, बढ़ेंगे या कम होंगे? उस समय आत्मरक्षा का साधन क्या है? कोई मनुष्य किसी की रक्षा नहीं कर सकता है। शास्त्रों में ये बात आई कि रावण जैसा, रावण जो इतना शक्तिशाली था, श्री राम के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गया, परंतु सीता जी को जब सम्मोहित करके ले आया तो अपने घर में नहीं रख, अपने महल में नहीं रख सका, बगीचे में रखना पड़ा। और उसके बाद सीता जी को स्पर्श तक नहीं कर सका। कौन से शस्त्र थे सीता जी के पास अपने आत्मरक्षा के लिए? एक घास का तिनका, जो उठा करके सीता जी ने रावण को चैलेंज कर दिया कि हे रावण, इस घास के तिनके से आगे तूने कदम भी बढ़ाया तो जल जाएगा। कौन सी शक्ति थी? 14 साल के ब्रह्मचर्य व्रत की शक्ति थी, जिस कारण रावण जैसा रावण भी हिम्मत नहीं कर सका उसको स्पर्श करने का। सर्वनाश हो जाएगा, वो समझता था इस बात को। भगवान को कहा जाता है जानी जाननहार है, सब कुछ जानता है। क्या जानता है भगवान? क्या जानता है भगवान? समय को बहुत अच्छे से जानता है। और इसीलिए आने वाला समय कौन सा है उसके लिए सावधान करते हैं कि समय का शिकार नहीं बनना है तो आत्मरक्षा का ये कवच अपना लो। कई लोग हमसे पूछते हैं भगवान ऐसे समय में मदद क्यों नहीं करता है? भगवान मदद करना चाहता है, इसीलिए कहता है, क्योंकि आज भगवान तो जानता है ना, भगवान परम पवित्र आत्मा है। और उस परम पवित्र की मदद को स्वीकार करने की अगर पात्रता नहीं है तो नष्ट हो जाओगे। जैसे दुनिया में कहावत है, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही रहता है। ऑर्डिनरी बर्तन होता है तो दूध इतना पावरफुल बर्तन को फाड़ देता है। ऐसे परम पवित्र परमात्मा की मदद को स्वीकार करने के लिए अगर पात्रता नहीं है तो कैसे स्वीकार कर पाएंगे? इसलिए भगवान मदद करना चाहता है, इसीलिए कहते हैं पात्रता को विकसित करो। कई लोग हमें कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारियां अपनी वृत्ति को सप्रेस क्यों करती है? सप्रेस नहीं करते हैं हम लोग, हर बात को यथार्थ समझ करके हमने जीवन में उसको अपनाया है। अगर जो व्यक्ति सप्रेस करता है ना, तो आप सब अनुभवी है, पागल हो जाता है, वो इम्बैलेंस हो जाता है, केमिकल इम्बैलेंस होने लगता है सप्रेस किया होगा तो। लेकिन आज कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारी आपको एबनॉर्मल नजर आए? हाँ, जिसका केमिकल इम्बैलेंस हो ऐसा नजर आया नहीं। क्यों? क्योंकि सप्रेस नहीं किया है, हर बात को यथार्थ समझ करके किया है। कई लोग हमें पूछते हैं क्या प्रूफ है कि पवित्र विधि से ये दुनिया चल सकती है? अरे आज से 2000 साल पहले जीसस का जन्म कैसे हुआ था? अगर एक वर्जिन मेरी बिना किसी भोग बल के जीसस को जन्म दे सकती है, 2000 साल पहले की बात है ना, उसको तो किसी ने भ्रष्टाचार नहीं कहा, अननेचुरल नहीं कहा। जीसस को, मदर मेरी को आज भी लोग पूछते हैं, 2000 साल पहले की बात है। भारत के अंदर शास्त्रों में ये बात है कि पांडव और कौरव की उत्पत्ति कैसे हुई थी, मंत्रों के बल से उत्पत्ति हुई थी। यानी संसार में एक समय ऐसा भी था जब मंत्रों के बल से उत्पत्ति होती थी। पांडु धृतराष्ट्र विदुर की उत्पत्ति कैसे हुई थी, दृष्टि के बल से उत्पत्ति हुई थी। श्री कृष्ण की उत्पत्ति कैसे हुई, योगेश्वर जिसको कहा, योग बल से उत्पत्ति हुई। यानी ये बात तो सच्चाई है कि संसार में समय प्रति समय उत्पत्ति का रहस्य भी बदलता रहा है, सदा काल एक जैसे नहीं चला है। और आज तो मॉडर्न साइंस भी कहने लगा है, मैं एयरपोर्ट पर थी और उस समय एक डिस्कवरी चैनल में देख रही थी, बहुत लेटेस्ट कुछ साइंस का ये रिसर्च हुआ है कि नारी अपने आप में सक्षम है। मेडिकल रिसर्च था जो डिस्कवरी चैनल पर दिखाया जा रहा था और मैं बड़े आश्चर्य से, कितना प्रैक्टिकल है वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जो मैंने देखा वो मैं आपको बता रही हूँ कि उस रिसर्च रिपोर्ट में यही बताया कि नारी अपने आप में सक्षम है उत्पत्ति करने के लिए, उसको किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, उसके बोन मैरो में ही स्पर्म तैयार होते हैं। ये मेडिकल साइंस का रिसर्च है, कितना है कैसे है ये मैं नहीं जानती हूँ, ये आप लोग मेरे से ज्यादा जानते हैं। और इसीलिए जब नारी अपने आप में सक्षम है तो ये आने वाला समय बताएगा, आने वाला समय बताएगा। कई लोग कहते हैं कि हम इस बात को कैसे माने कि कलयुग के बाद जो सतयुगी सृष्टि होगी उसमें पवित्र विधि से उत्पत्ति होगी, कोई प्रूफ हो तो बताइए। भगवान जानते थे ये कलयुगी मनुष्य हर बात में प्रूफ जरूर मांगेंगे, इसलिए आज भी उसने नेचर के अंदर एक पक्षी को रखा है जो पवित्र विधि से उत्पत्ति करता है। मोर का पक्षी पवित्र विधि से उत्पत्ति करता है और इसीलिए श्री कृष्ण के ताज में मोर का पंख सुशोभित है। ये कोई डेकोरेशन के लिए नहीं लगाया गया है, डेकोरेशन के लिए नहीं है, ये श्री कृष्ण ने भी सम्मान दिया है कि जितनी परम पवित्र श्री कृष्ण की आत्मा है उतना ही पवित्र ये पक्षी कलयुग में भी है। आजकल का साइंस, इंटरनेट के द्वारा आप देखेंगे कि हाँ मोर भी अभी भोग बल का इस्तेमाल करता है। लेकिन मैं बहुत सुंदर किसी व्यक्ति से बात कर रही थी तो उस समय उसने मुझे बताया, बहुत अच्छी बात बताई कि कौन सा मोर भोग बल को प्रयोग करता है। तो कहा जिस मोर का बच्चा यानी जो एग है उसको गर्माहट देने के लिए हैन, जो मुर्गी जो उसके ऊपर अंडे पर बैठती है और उसमें अगर, क्योंकि दोनों का एक जैसे ही लगता है जब छोटा होता है, और जिस अंडे को मुर्गी की गर्माहट मिलती है वो संस्कार मिलते हैं, गर्भ संस्कार, जिस मुर्गी को के द्वारा उस एग को मिलता है गर्माहट तो उसके अंदर वो मुर्गी के संस्कार आ जाते हैं, वही मोर भोग बल का इस्तेमाल करते हैं। बाकी जो नेचुरल रूप में जन्म लिया है वो कभी भोग बल का इस्तेमाल नहीं करता है। तो इसीलिए ये भी एक रिसर्च है, परमात्मा अभी जो समय का संकेत दे रहा है, योगी बनो, पवित्र बनो, करना न करना आपके ऊपर है, किस्मत आपके हाथ में है। किस्मत कैसे बनती है पता है? कई बार आपको ब्रह्मा कुमारी भाई बहनों ने निमंत्रण दिया, चलो माउंट आबू, चलो माउंट आबू, हर बार आपने क्या कहा? बहन जी जब ऊपर वाले की मर्जी होगी तो पहुंच जाएंगे। अभी जो आए किसकी मर्जी से आए? अपनी मर्जी से, ऊपर वाले की मर्जी से। आप लोग में कई ऐसे हैं जो आने वाले नहीं थे किसी और की टिकट पर आ गए और जो आने वाले थे लास्ट मोमेंट कैंसिल हो गए, है ना। तो ऊपर वाले की मर्जी हुई तभी पहुंचे ना। अब यहां से जाएंगे तो किसकी मर्जी पर चलेंगे? अब आपकी मर्जी होगी। द बॉल इज इन योर कोर्ट, राइट। तो ये है परिवर्तन, समय की पुकार, परिवर्तन। समय की मांग को समझो और परिवर्तन की प्रक्रिया को अपनाओ। जैसे शिवानी बेन ने कहा, बटरफ्लाई बन जाओ, अभी उड़ने का समय आया, एंजल बन जाओ, ठीक है ना। अच्छा, ओम शांति।
पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ।